प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। नमामि नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। उमा महेश्वर तव शरणम्। उमा महेश्वर तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। नमामि नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओंकारेश्वर तव शरणम्। केदारेश्वर तव शरणम्। ओंकारेश्वर तव शरणम्। केदारेश्वर तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। श्री विश्वेश्वर तव शरणम्। श्रीरामेश्वर तव शरणम्। श्री विश्वेश्वर तव शरणम्। श्रीरामेश्वर तव शरणम्। नम नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् नमा नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् नमामि नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् बोली सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान की अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद के ये क्षण जिन क्षणों का अपने पुण्यों के उदय से हम लोग इस सुंदर प्रेमपुरी वेदांत रासमंडल जो है जहां नित्य निरंतर प्रातःकाल अमृत बेला के शुभ सुंदर शुभ काल में वेदांत की अमृत वर्षा का हम लोग आनंद लेते हैं। परम ज्ञान अंतिम ज्ञान ऐसे सुंदर वातावरण में हमारे ऊपर प्रभु की अनुकंपा भगवान की महापुरुषों की अनुकंपा कि हमको इस प्रकार का परम ज्ञान का सुंदर सत्संग नित्य प्रति प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में हम लोग जो है वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का चिंतन कर रहे हैं। बाल लीलाओं के माध्यम से भगवान ने जो परम गहन आध्यात्मिक उपदेश और सांसारिक जीवन के वैज्ञानिक उपदेश जीवन का संचालन और अध्यात्म का चरम दोनों का समावेश जो भगवान की लीलाओं में है उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और इस समय वर्षा ऋतु के माध्यम से स्वयं सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्षा काल में घटित होने वाली घटनाएं हमारे और आपके जीवन में सांसारिक यानी सामाजिक और जो आध्यात्मिक घटनाएं हैं उनके संग एक हो जाती हैं। तो हमारा विषय चल रहा था किस प्रकार से तपः कृशः देव मीढ़ा आसीद वर्षी यसी मही यथैव काम्यत तपस्तनुः संप्राप्य तत्फलम्। कहते हैं जिस प्रकार से जेठ अषाढ़ की गर्मी में ये धरती तप कर सूख जाती है, इसकी हरियाली नष्ट हो जाती है, लेकिन जब वर्षा काल आता है तो पुनः पुनः ये जो है हरियाली वापस आकर धरती को सुंदर कर देती है। उसी प्रकार से सकाम तपस्वी जो काम कामनाओं को अपना लक्ष्य बनाकर तपस्या करता है तो ऐसा जो तपस्वी है जब उसका शरीर तपस्या करते करते कृशकाय हो जाता सूख जाता है तो जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है जिस लक्ष्य को लेकर वो तपस्या करता है जो वो कामना उसकी पूर्ण होती है तो उसका दुर्बल शरीर जो है निर्बल शरीर सबल हो जाता है परम शक्तिमान हो जाता है क्योंकि उसको अपने मन की कामना की पूर्ति का आनंद मिल रहा है। जिस लक्ष्य को लेकर उसने तपस्या की थी वही तपस्या उसकी जो है वो पूर्ण हो रही है। तत्पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। निशा मुखे सुखद्योतास तमसा भांति नाग्रहा यथा पापेन पाखंडा ना ही वेदा कलौ युगे। कहते हैं कि निशा मुखेशु खद्योतास तमसा भांति नाग्रहा। जिस समय बादलों का साम्राज्य वर्षा काल में बढ़ जाता है उसका परिणाम ये होता है कि चारों तरफ घनघोर अंधकार छा जाता है और उस बादलों के प्रभाव के कारण भांतिना ग्रह जो ग्रह नक्षत्र हैं जो तारामंडल आदि है वो दिखना बंद हो जाता है और जिनका वास्तविकता में कोई प्रकाश नहीं है जिनको हम खद्योत या जुगनू कहते हैं, आपने कीड़ा होता है जंगल में जिसमें लाइट यानी प्रकाश होता है, तो जो इंग्लिश में शायद फायरफ्लाई कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जुगनू को, जिसके अंदर चमक होती है, तो वो बहुत सारे आप जंगल में कभी रात्रि में जाएं वर्षा काल में तो आपको बहुत सारे जो है वो जुगनू या खद्योत, संस्कृत में खद्योत बोलते हैं उनको, चमकने वाला जो कीट होता है, बहुत से कीटों में वैसे चमक होती है लेकिन जो उड़ने वाले हैं कीट हैं उसमें ये खद्योत यानी जुगनू जो है वो आता है और देखा जाता है कि ऊपर के जो प्रकाशमयी ग्रह नक्षत्र हैं तारे हैं उनकी संपूर्ण भांति यानी उनकी जो चमक है वो समाप्त हो जाती है और जिनके अंदर वास्तविकता में बहुत साधारण सा प्रकाश है वो अपने जो है चमक को बिखेरने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ठीक इसी प्रकार से यथा पापेन पाखंडा ना ही वेदा कलौ युगे। कलयुग में इसी प्रकार से जब कलयुग के बादल छा जाते हैं तो पाप के खंड यानी पाखंडों का, पाखंड मतों का प्रचार प्रारंभ हो जाता है और वेदा कलो और ना ही वेदा और जो वेद का ज्ञान है जो वैदिक ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान लुप्त होने लगता है और मनोकल्पित जिनको हम धर्म कहते हैं वो उनकी जो है जगह लेने लगते हैं। ये हजारों साल पहले कहा गया श्लोक है हमारा और यथावत हमको देखने को मिलता है और तुलसीदास जी ने तो उत्तरकांड में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ। जो वास्तविकता में हमारा जो श्रुति सम्मत पथ है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह वश कल्पहि पंथ अनेक। देखिए कहते हैं यथा पापेन पाखंडा ना ही वेदा कलौ युगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मनोकल्पित जो श्रुति सम्मत पथ है हमारे यहां वो है दो ही चीजें केवल पर्याप्त हैं अध्यात्म में चलने के लिए, उसका नाम है संयुत विरति विवेक। संयुत का मतलब जो जोड़ा है, एक है विरक्ति यानी वैराग्य और दूसरा है विवेक। केवल हमको दो ही चीजें चाहिए, एक का नाम है वैराग्य और दूसरे का नाम है विवेक। अगर हम दो चीजों को आधार मानकर अपने आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ना प्रारंभ करें तो हमको तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या जो होती है वो ये होती है कि विरक्ति को स्वीकार करना जीवन में बड़ा कठिन है और विवेक का सहारा लेने पर हमको असत्य को छोड़ना पड़ता है और सत्य को ग्रहण करना पड़ता है। जहां पर सत्य के ग्रहण की बात और असत्य के त्याग की बात आती है वहां पर हमारा मोह जागृत हो जाता है, फिर हम अपने लिए कोई नया रास्ता अपने मन की कल्पना के अनुसार तैयार कर लेते हैं और उस रास्ते को मुझे ये पाठ करना है, मुझे ये जाप करना है, मुझे ये करना, ऐसे तरह तरह के हम मनोकल्पित साधनाओं को रच लेते हैं और भगवान ने तो गीता में बहुत विस्तृत व्याख्या की है कष्ट तप की। तो वास्तविकता में जो ये हमारा सीधा सा बिल्कुल रास्ता है दो चीजों का, कोई तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है अध्यात्म में, नंबर एक वैराग्य और नंबर दो विवेक। लेकिन समस्या वहां पर केवल यही आती है, वैराग्य का मतलब संसार के प्रति वासना रहित होना और विवेक का मतलब सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के त्याग में हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, हमारा जो है बुद्धि बल समाप्त होने लगता है, समस्या ये आती है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने मनोकल्पित रास्ते को ही अपना सही रास्ता मान लेते हैं, और परिणामतया उसका परिणाम ये होता है कि जीवन पर्यंत चलते रहने पर भी हम एक साधारण से इंसान की तरह ही परेशान रहते हैं। भाई किसी के पास 10 करोड़ की संपत्ति हो और वो कहे कि मैं भूखा मर रहा हूं तो क्या कहोगे आप? है उसका कोई जीवन का इस्तेमाल? 10 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो और कहे कि मैं भूखा मर रहा हूं तो उसके लिए क्या शब्द है हमारे पास? है कोई रास्ता? है कुछ नहीं। वही स्थिति हमारी है। सारा जीवन हमने अध्यात्म के जो है रूप में या अध्यात्म को ही जिया या सुना, लेकिन हमारा हाल भी अगर एक साधारण से मनुष्य की तरह ही रहा, हम वैसे ही परेशान रहे और वैसे ही दुखों में रोते रहे, तो महाराज फिर हमारे इस अध्यात्म का क्या फायदा? तो वही बात हो गई कि 10 करोड़ के मालिक और भूखे मर रहे हैं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी कहते हैं ना, पानी में मीन पियासी है, पानी में पड़ी हुई जो मछली है वो कह रही है मैं, अब इसका कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम बिल्कुल साधारण साजो मार्ग है, कोई लंबा चौड़ा मार्ग ही नहीं है कि ये करना है वो करना है, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, केवल श्रुतियां केवल एक ही चीज पे जोड़ देती, एक का नाम है वैराग्य और दूसरे का नाम है विवेक, विचार। यदि आप विवेक के द्वारा और वैराग्य के द्वारा अपने अध्यात्म पथ में अग्रसर होते रहेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बस वहीं पर समस्या आती है, वैराग्य को हम ग्रहण नहीं करना चाहते, विवेक को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, कोई तीसरा रास्ता चाहते हैं, और तब प्रकट होते हैं नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के रूप आपको देखने को मिलते हैं। कोई कहता ये सही, कोई कहता वो सही, कोई कहता ये मानो, कोई कहता वो मानो। ये सब कब प्रकट होते हैं? जब हम अपने वैदिक धर्म की ओर ध्यान न देकर, वेद की आज्ञा की ओर ध्यान न देकर मनोकल्पित साम्राज्य को रचते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि जीवन पर्यंत हम नाटक करते रहते हैं धार्मिक होने का, लेकिन हमारी मनः स्थिति, हमारी बुद्धि की स्थिति दोनों बिल्कुल एक सामान्य जो साधारण सा इंसान होता है उसी के तरह ही हमारा जीवन रहता है। उसके जीवन में और हमारे जीवन में वास्तविकता में कोई फर्क नहीं आता। ये आध्यात्मिक जीवन होने पर भी कुछ ना मिलने वाला, सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी यदि भिक्षुक यानी भिखारी बना रहे तो फिर फायदा क्या इस अध्यात्म का? इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो है इस वर्षा काल के इस रूप के द्वारा उपदेश दिया है कि निशा मुखेशु खद्योदात तमसा भांति नाग्रहा, उस जो है बादलों के आच्छादन के कारण ग्रह तारा नक्षत्र मंडल जो विशेष प्रकाशमय है वो दिखाई नहीं देता, और जिनके अंदर कोई प्रकाश नहीं है वो प्रकाशित होने लगते हैं, यानी जो वैदिक धर्म है वो हमको दिखाई नहीं देता और मनोकल्पित धर्म को हम उससे भी श्रेष्ठ घोषित कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद जो एक बहुत सुंदर दृश्य वर्षा काल में देखने को मिलता है वनों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं अगर आप, तो वहां पर जो है क्योंकि जिसमें जिसकी रुचि होती है उसको वैसा ही अनुभव होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, श्रुत्वा पर्जन्य निदम मंडूका ब्रसजन गिरा तूष्णीं शयाना प्राक यद्यद् ब्राह्मणा नियमात्यये। कहते हैं जिस समय श्रुत्वा पर्जन्य निदम, जिस समय बादलों की गड़गड़ाहट आकाश में गूंजती है उस समय जो है धरती के जो पुत्र कहलाते हैं मेढक है ना, दादुर, साधारण भाषा में दादुर कहते हैं, मेढक कहते हैं, और संस्कृत में जो है मंडूक कहा जाता है ना, मंडूक के उपनिषद पढ़ते हैं ना आप, तो हमारे यहां जो वेद पाठी ब्राह्मण लोग हैं, है ना, बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो केवल वेद का पाठ करते हैं, उनको वेद का अर्थ मालूम नहीं होता है, केवल क्या करते हैं, प्रारंभ काल में जब ब्रह्मचारी लोग बटुक लोग जो है गुरुकुल में जाते हैं तो उनको वेद का पाठ सिखाया जाता है, यद्यपि वेद के अर्थ को न तो वो जानते हैं, क्योंकि वेद के अर्थ को जानने के लिए तो महाराज फिर तपस्या भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर बहुत कुछ जब प्रयत्न होता है तब वेद के अर्थ गूढ़ार्थ निकलते हैं, और फिर अर्थ निकलने के बाद उसका तात्पर्य निकलता है, और तात्पर्य निकलने के बाद तब अंत में तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए वेद जो है बड़ा गहन है, लेकिन उसकी गहनता तक न पहुंचने के कारण हम केवल उसके पाठ को या सस्वर पाठ को ही हम बहुत कुछ मान लेते हैं, और उससे भी, क्योंकि वेद का पाठ है साधारण चीज तो है नहीं, असाधारण ज्ञान है, स्वयं ब्रह्मा जी के हाथ में भगवान के द्वारा रचित वो वेद प्रकट हुए, तो ऐसा जो वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा वटकों के द्वारा किया जाने वाला पाठ है, कहते हैं जिस प्रकार वर्षा काल में ऊपर जब बादल अपनी गर्जना करते हैं तो नीचे जो है उसी प्रकार से उनकी गर्जनाओं से प्रसन्न होकर नीचे जो है वो बारिश के इंतजार में बैठे हुए मेंढक जो है वो उस बारिश की प्रसन्नता में जो है अपनी प्रसन्नता को शामिल कर देते हैं, और उन बादलों की ध्वनि के संग अपनी ध्वनि को मिला देते हैं, और नीचे से जो है चारों तरफ टर 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 की क्या आने लगती है, आवाज आने लगती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसी प्रकार से प्राग यद्यत ब्राह्मणा नियमात्मे, कहते हैं अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर जब गुरु की आज्ञा उनको प्राप्त होती है तो बटुक समुदाय इसी प्रकार से महाराज वेद का क्या करने लगता है, पाठ करने लगता है, गुरुकुलों में महाराज चारों तरफ प्रातःकाल नित्य नियम से निवृत्त होकर बटुकों के समुदायों के द्वारा जो बोला जाने वाला वेद का गायन है वो सुनकर वैसा ही आनंद आता है जैसे वर्षा काल में प्रारंभिक अवस्था में मेंढकों की जो है टर टर सुनने में आपको क्या आता है, आनंद आता है, और मेंढकों को जो है उमड़ते घुमड़ते बादलों का जो निनाद है उसको सुनकर उनको आनंद आता है। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक बड़ी सुंदर जो हमारी सामाजिक स्थिति है, क्योंकि हमारे शास्त्र हर चीज पर विचार करते हैं, और विचार क्या करते हैं, हमारे लीला नायक दोनों या जिनको आप राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं उसका अवतार का मुख्य कारण ही केवल और केवल सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना था, और संघ में जो जन्म जन्मांतरों के तपस्वी थे उनको तृप्त करना था। सामाजिक व्यवस्था जब आसुरी भाव को प्राप्त हो जाती है, आसुरी भाव का मतलब जब व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीने की चेष्टा करता है, इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य के अंदर आसुरी स्वभाव व्याप्त हो जाता है और वो जो है हिंसक हो जाता है, जैसा कि आप वातावरण आजकल देख रहे हैं, चारों तरफ हिंसा के अलावा दूसरा कोई राज्य ही नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारी आसुरी स्वभाव का परिचायक है। तो इस आसुरी सत्ता को समाप्त करने के लिए और दैवी सत्ता को निर्धारित करने के लिए भगवान जो है राजा बनकर या सामाजिक व्यवस्था को संभालने के लिए अवतार लेते हैं। तो उसी प्रकार का एक उदाहरण यहां सुखदेव जी ने जो है दिया है नदियों के रूप में, कि जब वर्षा आरंभ होती है तो क्या होता है, आसन्नुत्पथवाहिन्या क्षुद्र नद्यो अनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आसन्नुत्पथवाहिन्या, कहते हैं जब जो है वर्षा प्रारंभ होती है, जो बहुत दिनों से बिल्कुल साधारण सी दिखाई देने वाली छोटी छोटी नदियां बिल्कुल सूखी पड़ी थी, एकाएक उनमें जो है जल भरने लगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज वो क्षुद्र नदियां जो हैं अपनी सीमाओं को तोड़कर, महाराज अपने पथ को तोड़कर बहने लगी, जिनके अंदर लेश मात्र भी जल नहीं था, जहां पर अपनी प्यास को बुझाना भी पथिक के लिए संभव नहीं था, ऐसी नदी वर्षा काल में अपनी सीमाओं को तोड़कर महाराज बह रही है, जो उसकी सीमा नहीं है उसको भी वो पार कर जाती है महाराज, और अपनी सीमाओं को पार करके बहुत सारे इलाकों को अपने चपेट में लेकर महाराज वो बहने लगती है। कहते हैं ये वर्षा काल की क्षुद्र नदियों की अवस्था है, क्षुद्र नद्यों अनुशुष्यति। कहते हैं ये क्षुद्र नदियां जो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी, वर्षा काल के मेघ जो वर्षा काल का जो मेघ बरसता है और अतिशय मेघ की वर्षा के बाद उन क्षुद्र नदियों में बाढ़ आ जाती है महाराज, और वो दूसरों के लिए कष्टकारी बन जाती। इसी प्रकार से कहते हैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर जाना इन क्षुद्र नदियों का स्वभाव होता है। पुंसो यथा स्वतंत्रस्य, कहते हैं अजितेंद्रिय पुरुष जिसकी इंद्रियां, हमारे यहां सनातन धर्म में इसलिए दो चीजें हैं, दमन और समन, इंद्रियों का दमन और मन का समन। जब तक इंद्रियों का दमन नहीं होगा और मन का समन नहीं होगा आपके जीवन में आनंद नहीं होगा, है ना। जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक है इंद्रियों का दमन और मन का समन। तो यहां पर जो है उदाहरण दिया सुखदेव जी ने, पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। कहते हैं जिस प्रकार से अजितेंद्रिय पुरुष को अनायास ही कहीं से धन की प्राप्ति हो जाती है ना, जिसके पास धन नहीं किसी ने देखा और एकाएक उसको धन संपत्ति की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो जिस प्रकार से जिसमें जल पीने के लिए भी नहीं था, किसी पथिक की प्यास को भी जो नदी बुझा नहीं सकती थी, अब अपनी सीमाओं को लांघ कर महाराज वो दूसरों को भी डुबाने में सक्षम है। इसी प्रकार से अजितेंद्रिय पुरुष के पास बढ़ी हुई संपदा है। देखिए आप लोगों ने अक्सर एक चीज देखी होगी कि भगवान के भक्त हमेशा आपको गरीब मिलेंगे ज्यादातर, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपको वर्तमान काल में नरसिंह मेहता के रूप में देखने को मिलता है। नरसिंह मेहता नगर सेठ थे, क्या थे, नगर सेठ, मतलब पूरे नगर में उनका परिवार ही क्या था, संपदावान था महाराज, जरा सोचिए। और उन नरसिंह मेहता की, जिनका असली नाम नरसिंह मेहता, उनका असली नाम क्या था, हाँ ये समाज का कार्य अपभ्रंश कर देना, किसी को हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं तुरंत, नरसिंह मेहता का क्या कर दिया हमने, नरसिंह भगत कर दिया, नाम ही गायब कर दिया पूरा अपना ही नाम, इसी को तो समझा रहे हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संयुत विरत विवेक तई न चलई नरमोहवश कल्पई, हम नाम ही बिगाड़ देते हैं, असली नाम ही गायब हो गया बेचारे का, नरसिंह नाम गायब करके उनका नाम हमने क्या कर दिया, नरसिंह शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता, अब नरसिंह 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 करने लगे, नरसिंह को हमने क्या बना दिया। ये हमारा कार्य है देखो, है ना, ये बुद्धिहीनता का परिचय होता है, असली नाम ही आदमी को पता नहीं है कि बेचारे क्या थे। तो ऐसे जो नगर सेठ थे उनकी संपूर्ण संपदा भगवान ने क्या कर ली, क्योंकि छीनने वाला भी वही है और देने वाला भी किसी और ने नहीं, भगवान ने ही उनको ऐसा दानी बना दिया कि उन्होंने अपना सब कुछ क्या कर दिया, साथ दान कर दिया महाराज, कुछ भी नहीं बचा, और यहां तक कि अपनी रोटी खाने के लिए भी महाराज उनकी समस्या गंभीर हो गई। लेकिन उनकी हरि भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान कहते हैं अजितेंद्रीय पुरुष, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पुंसो यथा स्वतंत्रस्य अजितेंद्रिय, स्वतंत्र, सबको आजकल क्या चाहिए, समाज में आजकल सबको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, मेरे ऊपर कोई जो है आज्ञा देने वाला ना हो, मेरी जो मर्जी आए मैं करूं, ऐसा जीवन का जो हमारा स्वभाव बना हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति अजितेंद्रिय पुरुष क्या करता है, देह द्रविण संपदा, वो कभी भी अपनी संपदा का, अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाता। अजितेंद्रिय पुरुष की संपदा हमेशा व्यर्थ के कार्यों में ही क्या होती है, इस्तेमाल होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। और देखते हैं आजकल आप लोग, है ना, हम मंदिर में जाते हैं, हम 5 रुपए चढ़ाने में बड़ा कष्ट अनुभव करते हैं मंदिर में, लेकिन जब हम पार्टी करते हैं तब क्यों भाई, जब पार्टी करते हैं वहां कम लगता है, अभी मजा नहीं आई, कुछ और होना चाहिए था, जरा सोचो। और जितने ज्यादा महाराज धनाढ्य हैं उनको उतनी ही बढ़िया पार्टी करने में क्या आती है, जिनको 10 रुपए मंदिर में डालने में कष्ट होता है वो जब पार्टी करते हैं तो महाराज वहां पर एक एक बोतल की कीमत 15-15 लाख रुपए है। जरा सोचो धन का उपयोग कितने की। ये धन का उपयोग है। अचितेंद्रिय पुरुष, जहां पर महाराज हमको अपनी कोई सीमा नहीं दिखाई देती फिर भी हम अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं, ये आसुरी धर्म की प्रवृत्ति है। जहां पर मनुष्य को कोई संकोच नहीं होता लेकिन जहां पर धन के सदुपयोग की बात आती है या किसी के लिए या किसी के सहायता के लिए बात आती है वहां पर हमारा सब कुछ बुद्धि विवेक सब काम करना बंद कर देता है। लेकिन जहां धन के व्यर्थ नष्ट करने की बात आती है वहां हमारी बुद्धि विवेक सब काम करने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसी प्रकार से जैसे वो क्षुद्र नदी किसी की प्यास बिना बारिश काल के बुझा नहीं सकती थी, इस समय अपनी सीमाओं को तोड़कर महाराज चारों तरफ उसने अपना पानी बिखेर रखा है, दूसरों की झोपड़ियों को नष्ट कर रखा है, दूसरों को डुबा दिया है, किनारे रहने वाले जीवों को डुबा दिया है। कहते हैं ये स्थिति किसकी है, अजितेंद्रिय पुरुष के धन संपत्ति के उपयोग की अवस्था है। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सौंदर्य का वर्णन दिखाया है कि किस प्रकार से जब वर्षा काल आती है, वर्षा काल के आने पर ये वर्षा काल अपने श्रृंगार को स्वयं जो है सजा लेता है, अपना श्रृंगार स्वयं कर लेती पृथ्वी। देखिए हरिता हरवी शष्पेन्द्रिय गोपैश्च लोहिता उच्छिलीन्द्र कृतच्छाया नृणाम श्रीरिव भूरभूत। सुखदेव जी कहते हैं हरिता हरवी, हरी हरी घास कहीं पर जो है हरिता यानी जो हरी घास जिसको हम घास कहते हैं, हरिता हरवी हरी हरी घास के झुंड कहीं दिखाई देते हैं, कहीं पर गोपैश्च लोहिता कहीं पर लाल लाल फूल या लाल लाल जो है तरह तरह की जो पेड़ पौधे या बूटे हैं उस तरीके के दिखाई देते हैं। उच्छलीन्द्र कृतच्छाया जिनको आप लोग आजकल मशरूम बोलते हैं, जो जो वर्षा काल का जो छत्र माना जाता है सफेद रंग का, तो उनकी बाढ़ आ जाती है चारों तरफ महाराज। तो ऐसा लगता है कहते हैं जिस प्रकार से निर्णाम श्रीरिव भूरभूत, जैसे इस संसार में जो है कभी राजा की रंग बिरंगी सेना जब निकलती है तो उस प्रकार का एक दृश्य देखने को वर्षा काल में मिलता है कि स्वयं ही ये पृथ्वी वर्षा की कृपा के द्वारा अपने सौंदर्य को रच लेती है। हरी हरी घास, उसके पीछे लाल लाल पौधे, उसके पीछे महाराज जो है वर्षा के छत्र यानी जो है जिनको आप मशरूम कहते हैं या साधारण से जो वर्षा छत्र हैं सफेद रंग के, उनकी सेना दिखाई देती है। तो इस प्रकार से रंग बिरंगी सेना के द्वारा ये पृथ्वी अति सौंदर्य को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हमारे एक सामाजिक व्यवस्था का रूप दिखाया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। क्षेत्राणि सस्य संपद्धि कर्षकाणां मुदं ददुः धनिनाम उपतापम चा दैवाधीन मजानताम। कहते हैं क्षेत्राणि सस्य संपद भी कर्षकाणाम मुदम दधु। जिस समय जो है वर्षा काल आता है और हमारे यहां वर्षा काल की जो खेती है वो किस चीज की होती है, धान, जिसको आप चावल कहते हैं ना, धान। धान जो है किसमें, वर्षा काल में उत्पन्न होता। तो ज्यों ज्यों जो बीजे गए जो रोपे गए जो धान के पौधे हैं, ज्यों ज्यों बारिश होती जाती है त्यों त्यों उनमें जो है वृद्धि होती जाती है, और उनकी वृद्धि होने पर उनके अंदर जो है लगे हुए जो धान की बालियां हैं उनको देख देख कर महाराज सस्य संपद भी है धरती में फैली हुई महाराज विशाल अन्न की राशि को देखकर सुखदेव जी कहते हैं कर्षकाणाम मुदम ददु। जो किसान हैं जिन्होंने उसके लिए अतिशय परिश्रम किया था, अपनी उस सुंदर भरी हुई धन धान्य से भरी हुई भूमि को देखकर महाराज उनका मन बिल्कुल क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उनकी इस प्रसन्नता को देखकर धनिक लोग दुखी हैं। देखिए ये सामाजिक व्यवस्था है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब उनकी जो है धान्य की वृद्धि होती है तो किसान तो महाराज अपने भविष्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अब हमको जो है रोटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्या आती है, पहले पूरे गांव में एक जो है धनिक होता था महाराज, पूरे गांव का एक धनी होता था, और वो धनी जो है क्या करता था कि किसानों के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा देता था कि महाराज किसानों को अलावा दुखी होने के कोई रास्ता नहीं होता था। सारा वर्ष खेती करते थे और अंत में अपना सारा अनाज उसी के पास जमा कर देते थे। तो जब कहते हैं सुखदेव जी धनिनाम तापम चा, कहते हैं धनिक लोग ताप को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी जो वृद्धि हो रही है धान्य की उसको देखकर धनिकों को ताप हो रहा है कि अब हम इनके ऊपर अपना अधिकार कैसे करेंगे, क्योंकि इस संसार का नियम है हर धनी व्यक्ति दूसरे के ऊपर क्या करना चाहता है, जितना ज्यादा धनी होता जाएगा, देख रहे हैं ना आप देशों का क्या हाल है, जो धनी देश है वो गरीब देशों के ऊपर क्या करना चाहता है, ये नियम है, संसार का नियम है हमारा, ये स्वभाव है। लेकिन यहां पर सुखदेव जी ने उदाहरण दिया है कि वो धनी व्यक्ति जो है ताप में जल रहा है कि हम इनके ऊपर अब अधिकार किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, लेकिन बेचारे वो ये नहीं जानते दैवाधीनम अजानता, देव की विधाता की लीला को वो नहीं जानते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध के वशीभूत है, जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है ये सब प्रारब्धावसात है, यानी सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है, कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता यदि उसका प्रारब्ध इस तरीके से रचा नहीं गया है, है ना। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था हमारे अंदर आपके अंदर प्रबलता से भरी हुई है कि हम दूसरे के ऊपर अधिकार कर लें, ये व्यक्ति हमारे अधिकार में रहे, इसके ऊपर मेरी आज्ञा चले, ये जो हमारा सामाजिक स्वरूप है ना, साधारण चीजें नहीं है, इसी का नाम है अध्यात्म। अक्सर हम इन सब चीजों को आपने देखा होगा, हम चाहते नहीं है कि हमारे अंडर में हमारे जो है संरक्षण में रहने वाला कभी ऊपर उठे, कभी चाहते हैं, हमेशा अमीर आदमी ये चाहता है गरीब व्यक्ति गरीब ही बना रहे और मेरी सेवा करता रहे, बोलो यही चाहते हो कि नहीं चाहते। इस निम्न विचारधारा के कारण ही हमको अध्यात्म में कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर भगवान भी इसी विचारधारा के होते तो क्या भगवान सुदामा को कभी ऐश्वर्य प्रदान करते, क्यों भाई हैं? आप किसी को ऐश्वर्य देना चाहेंगे? देखो हमको तो बड़ी साधारण सी लगती है ना, हम लोग तो बात करते हैं सीधे वेद, मैं ब्रह्म हूं, अरे ब्रह्म तो बाद में बनोगे, पहले इंसान तो बनो, इंसान तो बने नहीं ब्रह्म बन गए, बड़ा आसान है महाराज, ब्रह्म बनने में कितनी देर लगती, चुटकी में ब्रह्म बन जाओ। लेकिन समस्या गंभीर ये है, इंसान बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अपने बचपन के मित्र रिश्तेदार नातेदार कोई उनके सगे वाले नहीं थे, ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। यहां पर सुखदेव जी ने उदाहरण दिया है राजा परीक्षित को कि धनी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले को कभी अमीर बनता हुआ नहीं देखना चाहता, ये हमारा दोष है, ये दोष जब तक निवृत्त नहीं होगा तुम जितेंद्रिय कैसे कहलाओगे। सोचो विचार करके देखो, हम लोग कहते हैं साधना क्या करें, अरे यही साधना है, ये वेदांत साधना है, माला जपना, मंदिर के चक्कर लगाना, हिमालय पर्वत की चोटी में जाके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना है, कश्मीर में जाकर अमरनाथ के दर्शन करना, वैष्णो देवी जाके पैदल चल के वैष्णो की देवी के दर्शन करना, ये साधना नहीं है, ये साधना के नाटक बहुत बढ़िया है, लेकिन असली साधना ये है जो सुखदेव जी यहां समझाना चाहते हैं राजा परीक्षित को। वर्षा काल के द्वारा सब कुछ प्रारब्धावसात है, सब प्रारब्ध के अधीन है, तुम करने वाले कुछ नहीं हो, लेकिन ये मनुष्य अपने सुख की कल्पना में दूसरे को दुखी देखना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला सुखी हो गया तो मेरे सुख का क्या होगा, बोलो, पढ़ो अपने जीवन को, यही स्थिति है कि नहीं है? 100% है महाराज, यही देखने को मिलेगा आपको। कोई एक, इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। कोई एक परमात्मा के लिए चलता है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, संसार के सुख दुख से मेरा कोई लेना देना नहीं, हजारों में कोई एक ही धारणा बनाता है। और ऐसी धारणा बनाने वालों में मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है यततम अपि, ऐसे जब हजारों चलने वाले तैयार होते हैं, जहां पर करोड़ों में लाखों में एक की बात है, वहां पर जब ऐसे बहुत सारे चलते हैं यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता, कोई एक मुझे तत्व से समझ पाता है। क्योंकि हम अपने मनोकल्पित साम्राज्य को, हम अपनी मनोकल्पना के अनुसार अपने सजाए गए जीवन को, उस परिधि से, उस घेरे से हम कभी बाहर आना कोई नहीं आना चाहता हमारा। उस कुएं के मेढक की तरह हम उसी जिंदगी में जीकर हम चाहते हैं कि हमको जो है ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यहां पर शास्त्र कुछ और कहता है महाराज, भगवान की लीलाएं कुछ और कहती हैं। तो स्पष्ट शब्दों में सुखदेव जी ने यहां पर जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था को माध्यम बनाकर आध्यात्मिक राह में चलने वालों को महाराज यहां पूर्ण रूपेण उपदेश दिया। ये सब गुरु मंत्र हैं, आप बोलते ना कोई गुरु मंत्र मिल जाए, ये वो गुरु मंत्र है महाराज जिनमें कोई दुराव छिपाव नहीं और सबके लिए है। ये शास्त्र के गुरु मंत्र हैं, जिस दिन तुम्हारे अंदर इनको धारण करने की शक्ति आ गई, दूसरे को प्रसन्न करने की शक्ति आ गई, समझ जाओ तुम्हारा रास्ता बिल्कुल वेदों के द्वारा सम्मत है, है ना? वेदों के द्वारा बताया गया है। कहते हैं इस प्रकार से क्षेत्राण सस्य संपद भी कर्षकाणाम मुदम ददु धनिनाम उपतापम चा दैवाधीनम जानताम। देव के सब कुछ अधीन है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन है, ये ना जानने के कारण वो धनिक, वो महाराज जो है जलता रहता है कि हाय मेरे हाथ से सत्ता निकल गई। उसके बाद एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है महाराज अध्यात्म का ही, जलस्थलौकशाह सर्वे नववारी निषेवया अविभ्रद रुचिरम रूपम यथा हरे निषेवया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जलस्थ लौकशाह सर्वे, कहते हैं जब, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जल सूख सूख कर विषाक्त तो हो गया, गंदा हो गया, लेकिन ज्यों ज्यों वर्षा काल का जल बरसता गया त्यों त्यों शुद्ध जल की जो है वृद्धि होती चली गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी जलस्थ लौकशाह, जल में रहने वाले और थल में रहने वाले दोनों, यानी जलचर भी और थलचर भी, दोनों जो है नव वार निषेवया, नए जल का सेवन करके महाराज, देखा ना, इसीलिए यहां पर प्रारंभ में ही सुखदेव जी कहते हैं कि वर्षा काल में जो है सारे जो है कीट पतंगे सब इनकी क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, क्योंकि नए नए जल का सेवन करके इनके परिवार में जो है वृद्धि होने लगती है। तो जितने भी नवचर जलचर हैं और थलचर हैं, सब नए नए जल को पी करके महाराज, है ना, देखो आप जो गाय हैं, जितने भी जलचर और थलचर प्राणी हैं, जितने भी आपको जो है ये चरने वाले जीव, घास चरने वाले जीव हैं, वो जल, सुंदर जल पी पी कर, जिनको गर्मी में जल भी पीने को नहीं मिलता था, उसका सेवन करके महाराज सब हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। महाराज कहते हैं ठीक इसी प्रकार से अभिवृद्ध रुचिरम रूपम यथा हरि निषेवया, इसी प्रकार से महाराज भगवान का भक्त भी है, जब भगवान की सेवा में लग जाता है, यथा हरि निषेवया, जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है भगवान का भक्त, तो महाराज परमेश्वर की सेवा से उसको बाह्य और अंदर दोनों सुखों की प्राप्ति होती। जैसे जलचर और थलचर दोनों सुखी हो गए उस नई बारिश से, उसी प्रकार से हरि की सेवा से, जैसे उस सुंदर जल के सेवन से महाराज उन दोनों जगहों पर तृप्ति का अनुभव हुआ, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम हरि की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं, तो हमारा बाहर भीतर दोनों शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। यानी अगर हम अपने बाह्य जीवन को और अंतःकरण वाले जीवन को, दोनों को, आपने देखा नहीं, हमारा वाह जीवन अलग खड़ा होता है और भीतर का जीवन यानी जो आपका अंतःकरण चातुष्ट है वो अलग खड़ा होता। आपकी बुद्धि कहीं और जा रही है, आपका मन कहीं और जा रहा है, आपका अहंकार कहीं और जा रहा है। देखिए चारों महाराज अपनी अपनी दिशा में, चित्त कहीं और जा रहा है, चारों अपनी अपनी दिशा में भागे जा रहे हैं और तन से आप कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। ये विशेषता है महाराज, है ना। जब हम परमेश्वर की शरण में नहीं होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा में अर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण चातुष्ट है वो भी और जो हमारा बाह्य स्वरूप यानी तन है वो भी, दोनों सुखी हो जाते हैं और एक रस हो जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं वास्तविकता में मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने अंतःकरण और शरीर को बिल्कुल एक रस कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर तो कहीं और है और हमारा मन कहीं और नहीं। आपने देखा नहीं, सत्संग आप करते रहते हैं और आगे की विचारधारा, पीछे की विचारधारा, एकाएक आपके मन में किसी की कुंठा है, आप सत्संग में बैठे रहते हैं लेकिन विचार उसी का करते रहते हैं, है? अब उस व्यक्ति से पूछो तुमने कुछ सुना, क्योंकि उसका मन वहां पर था ही नहीं, है ना। तो शरीर कहीं और है और मन कहीं, और मिलने वाला क्या कहेगा, वाह भाई वाह, आप तो रोज सत्संग में आते हो। लेकिन समस्या केवल सत्संग में शरीर आता है, मन भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मन भी आए और तन भी आए तब दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। केवल तन के आने से काम नहीं चलेगा, जलचर भी और थलचर भी दोनों सुखी होते हैं महाराज। जब वर्षा का नव नूतन जल उनको प्राप्त होता है, इसी प्रकार से भगवान का भक्त जब अपनी मन बुद्धि चित्त सब कुछ भगवान को समर्पित करके भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसका बाह्य स्वरूप और अंतःकरण स्वरूप दोनों जो है परम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। सुखदेव जी का उपदेश है महाराज जी, सीधा उपदेश है, किसके लिए, राजा परीक्षित के लिए, है ना। सुखदेव जी स्वयं आए हैं महाराज राजा परीक्षित को तृप्त करने के लिए, जो उन्होंने आमरण बंसन का व्रत लिया है कि जब तक तक्षक मुझे डसेगा नहीं तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं, तो ऐसा जो संकल्प लेने वाले उनको तृप्त करने के लिए सुखदेव जी स्वयं साक्षात उपदेश कर रहे हैं। तो कल पुनः इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए साधारण सा वर्षा काल है और उससे ही महाराज अध्यात्म के गहन सूत्रों का प्राकट्य हो रहा है। इसी प्रकार से महाराज शरद ऋतु के द्वारा उपदेश दिया है, बहुत सुंदर प्रसंग, एक एक चीज को बड़ी गंभीरता से समझने योग्य चीजें हैं। कल पुनः इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।